Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, मिश्र देश में एक बहुत ही प्रसिद्ध मुसलमान संत हुए जुन्नून नाम के। उनके पास एक युवा पहुंचा और उन्होंने कहा कि मुझे दीक्षा चाहिए आपसे, मैं भी भक्ति, ज्ञान और आध्यात्म को जानना चाहता हूं। महात्मा जुन्नून ने कहा कि पहले तुम एक काम करो, नील नदी के पास मेरा एक मित्र रहता है, तुम एक बॉक्स है उसे दे करके आओ। अब बॉक्स दे दिया उस युवा को उन्होंने, उसमें ताला नहीं लगा हुआ था। युवा उस बॉक्स को लेकर के चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा कि बॉक्स में ताला तो लगा नहीं है, हो सकता है कुछ बहुत ही अमूल्य ज्ञान की निधि हो, मैं कहीं बैठ करके थोड़ा सा इसका अध्ययन आदि कर लूँ तो ज्ञान की शायद शुरुआत हो जाए। अब उसने जैसे ही वो बॉक्स खोला तो उसमें एक चूहा था, वो कूद के भागने लगा। अब उसे लगा कि अब मैं कैसे इस चूहे को पकड़ूँ, बहुत कोशिश की लेकिन चूहा तो चूहा था, वो एक बिल में घुस गया। अब बहुत निराश हुआ वो युवा, लेकिन खैर वो पहुँचा नील नदी के पास, उस संत के पास। अब जैसे ही बॉक्स दिया कि महात्मा जुनून ने आपके लिए दिया है, उनके मित्र ने खोला, वो देखा कि बॉक्स में तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने युवा से पूछा कि इस बॉक्स को तुमने खोला तो नहीं था? उसने सारी घटना सुना दी कि सचमुच मुझे लगा कि मैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर लूँ, खोला लेकिन अंदर एक चूहा था, वो तो भाग खड़ा हुआ। तो संत ने कहा कि अब शायद ही तुम्हें ज्ञान देंगे महात्मा जुनून, फिर भी तुम उनके पास जाओ और याचना करना, क्षमा याचना करके कहना कि वो तुम्हें ज्ञान दें। जब वो वापस पहुंचा युवा, उन्होंने अपनी सारी घटना सुनाई महात्मा जुनून को, तो उन्होंने कहा कि देखो, तप करने के लिए या आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। तुमने एक छोटे से बॉक्स को यदि तुम नहीं संभाल पाए तो ऐसे सुंदर और श्रेष्ठ ज्ञान को तुम कैसे संभाल पाओगे? इसलिए पहले संयम को अपने जीवन में लाओ, उसके पश्चात तुम्हें ज्ञान दिया जाएगा, और साथ ही इसके लिए तुम तप की शुरुआत भी करो, क्योंकि तप के माध्यम से ही जीवन में संयम आता है, इंद्रियों में संयम आता है। ये सीख उन्होंने दी। युवक कुछ वर्ष तक तपस्या करता रहा, उसके पश्चात पुनः वो महात्मा जुनून के पास पहुंचा और उसे श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, वास्तव में संयम यदि देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आज हम देखें तो अपने मन में कई बार हम संयम नहीं रख पाते, वाणी में संयम नहीं रख पाते, व्यवहार में संयम नहीं रख पाते, और फलतः बहुत सारी असफलता हमारे जीवन में घर कर जाती है, समस्याएं घर कर जाती हैं। इसीलिए तप की लगातार हम सुंदर चर्चा कर रहे हैं कि इसके माध्यम से हम अपने जीवन में संयम को धारण करें और सफलता की ओर बढ़ें। आइए इस सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
थैंक यू।
भ्राता जी, ये चूहा भाग ही खड़ा होता है जब कभी हम बॉक्स खोलते हैं या संयम को खो देते हैं, तो सचमुच ये भागता है और जीवन में समस्याएं पैदा हो जाती हैं।
बिल्कुल, मन की पिटारी को खोल दो तो न जाने कहाँ कहाँ भागेगा ये और भागेगा ऐसी जगह जहाँ उसको भागना नहीं चाहिए, कभी कभी ऐसी जगह भागेगा जहाँ उसको कृत्रिम आनंद मिलता है और वो उसमें फंस जाता है। तो ये सत्य है कि संयम की परम आवश्यकता है, और बिना तपस्या के, मैं शब्द जोड़ दूं, राजयोग की तपस्या से संयम आता है, वाणी में आता है, व्यवहार में आता है, संकल्पों में आता है, कर्मेंद्रियों पर आता है, और हम किसी भी लक्ष्य को पाने में सफल हो जाते हैं।
बिल्कुल, और इसकी शायद बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अभी भ्राता जी, क्योंकि जो असंयमी होता है जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोल जाता है, जहाँ नहीं सोचना चाहिए वहाँ सोच सोच के परेशान होता रहता है। तो सचमुच बहुत महत्वपूर्ण चीज है आज के लिए।
आजकल इसकी बहुत जरूरत है, विशेष करके नई पीढ़ी में जी, क्योंकि उनके पास संयम की बहुत ज़्यादा कमी है। वो एक दिखावे की भावना, एक ईगोइस्टिक फीलिंग ये युवकों में बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए वो, मान लो चार युवक हैं तो हर एक चाहता है कि सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मैं बोलूँ, चाहे बनावटी बात बोले, तो इसमें संयम खो जाता है। जैसे एक जगह की बहुत हंसी की बात है, एक को ये पता तो नहीं था कि डॉलर क्या होता है, तो व्यक्ति बोल रहा था, एक युवक, कि डॉलर बहुत महंगा होता जा रहा है। दूसरे ने कहा, अरे डॉलर क्या महंगा, हमारे यहाँ तो रोज घर में लाया जाता है, हम तो सब्जी बना के खाते हैं। सब इतने जोर से हंसे उसने सोचा होगा डॉलर किसी सब्जी का नाम है, ये टमाटर महंगे हो रहे थे, प्याज महंगा हो रहा था तो डॉलर भी महंगा होता था। तो एक दिखावे की भावना मनुष्य को असंयमित कर देती है। वास्तव में संयम से हमारी शक्तियों में वृद्धि होती है और ये शक्तियाँ हमें हर फील्ड में सफल करती हैं।
जी, कर्मेंद्रियों के संयम की बात लगातार कही जाती रही है ब्रदर जी। शास्त्रों में भी यदि हम देखें तो भी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, तप में इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, और आजकल भले ही समाज में इसकी चर्चा ना हो लेकिन कर्मेंद्रियों पे संयम की तो आवश्यकता महसूस होती ही होती है। कैसे ये संयम आ सकता है सहज रूप से?
देखिए, आँखों पर संयम, जीभ पर संयम, मुख पर संयम, कानों पर संयम, और भी जो इंद्रिय हैं हाथ आदि, इन पर भी संयम ये परम आवश्यक है। क्योंकि कर्मेंद्रियों का रस यदि किसी मनुष्य के पास है तो उसे अतिंद्रिय रस, जो ईश्वरीय रस है, वो प्राप्त नहीं हो पाता है। तो मैं आत्मा यहाँ हूँ, मालिक हूँ, ये हमारी एक साधना है कि मैं आत्मा हूँ और ये देह मेरा माध्यम है, ये मेरा वस्त्र है, मालिक तो मैं हूँ और मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, और इसको नाम दिया जाता है कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो ये प्रैक्टिस अगर हम बार बार करते हैं और साथ में ध्यान भी देते हैं कि इन कर्मेंद्रियों के रसों से हमें मुक्त रहना है, क्योंकि ये रस मनुष्य को बाह्यमुखी बनाते हैं, उसका आकर्षण बाहर की ओर, दुनिया की ओर चला जाता है और तब एक में चित्त एकाग्र नहीं होता है। तो ये स्वराज्य अधिकारी की प्रैक्टिस इसमें बहुत बड़ी मदद करती है।
बिल्कुल, मतलब इस साधना से हम संयम ला सकते हैं अपने जीवन में, अन्यथा संयम के बिना सचमुच बहुत सारी परेशानियां तो हो ही रही हैं व्यक्ति को।
और भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, मान लो कान है मनुष्य के, अब कान जो है वो अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, मान लो एक अच्छा संगीत वो सुनना चाहते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि मन की स्थिति बहुत निगेटिव है तो कानों से मनुष्य दूसरे की निंदा सुनना चाहता है। अगर कहीं निंदा होने लगे तो घंटों बिता सकता है,
निंदा रस
में आनंदित हो जाएगा मनुष्य, वाह आज मजा आ गया। अच्छा, इससे होगा क्या, अंदर की शक्तियां नष्ट हो गई। आंखें सुंदर सुंदर सीन देखना चाहती हैं, लेकिन जितना ये सुंदर चीज संसारिकता की ओर देखेंगी, संसार में इसकी देह सुंदर, कहीं पोस्टर सुंदर, कोई पिक्चर सुंदर, कहीं और प्रकृति के सौंदर्य उनकी सुंदरता, तो उतनी ही आंतरिक शक्तियाँ नष्ट होंगी। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जीभ का रस, खाने पीने का, बस समोसों की खुशबू आई नहीं और कदम चल पड़े उधर की ओर, इसी के कारण रोग शराब का रस और ये जो गंदगी है इसके रस में डूबे रहते हैं, इससे पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है। संयम की बात तो छोड़ो, जीवन का सुख भी चला जाता है, बौद्धिक क्षमता, प्रेम की शक्तियाँ सब नष्ट हो जाती हैं। ऐसे ही बोल, मुख, बोलता है मनुष्य, और कई लोग जो ज़्यादा बोलते हैं जिनको वाचाल कहा जाता है, दिखावा तो बहुत करते हैं कि वाह मेरे पास बहुत ज्ञान है, उन्हें कहो अमेरिका में एक सिटी है लॉस एंजिलिस, हाँ हाँ है मैं जानता हूँ उसके बारे में, चाहे उसको कुछ पता ना हो उसके बारे में। तो ये वाचा का संयम बहुत आवश्यक है, इसलिए लोग ये कहा करते हैं विद्वान के मौन से भी अधिक महत्वपूर्ण है वाणी का संयम। मौन में तो मनुष्य चुप है, उसे कुछ बोलना ही नहीं, लेकिन जब वो बोलता है तो क्या बोलता है, वो कैसे बोलता है, वो कितने नपे तुले शब्द बोलता है, वो मीनिंगफुल भाषा बोलता है, वो कड़वे वचन बोलता है या सुखदाई बोलता है, इस सब का बहुत महत्व है। तो ये कर्मेंद्रियों के जो रस हैं, जो साधक इन रसों से स्वयं को मुक्त कर ले, अर्थात इनकी जो इच्छाएं हैं व्यर्थ, खाने पीने की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बीमार होते भी मनुष्य खाता रहता है, कहा है कि डायबिटीज है, अब वो रसगुल्ले ना खाना, ज़्यादा मीठे होते हैं, फिर भी रसगुल्लों को देखते जीभ ललचाने लगती है, तो सोचता है गोली खा लेंगे, कोई बात नहीं दो तो खा लो, तो उससे नुकसान होते रहते हैं। इन कर्मेंद्रियों के रसों से मुक्त व्यक्ति निरंतर ईश्वरीय रस का अधिकारी बन जाता है।
बिल्कुल तथा जी, वाचाल की जो आपने बात कही, तो हम लोग एक बार पदयात्रा में थे, तो उस पदयात्रा में एक बड़ा ही सुंदर सा वाचाल पे एक जोक था जो बड़ा प्रचलित था, तो एक व्यक्ति बहुत ही वाचाल था और बड़ी लंबी लंबी, जो आपने फेंकने की बात कही वो भी बड़ी लंबी लंबी फेंका करता था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आप ना थोड़ी ज़्यादा फेंक देते हो, तो सामने वाले को डाइजेस्ट नहीं होता और वो समझ जाता है कि आप फेंक रहे हो। तो पति ने कहा कि तो मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि अब ना आप ज़्यादा लंबी जब फेंकोगे ना तो मैं थोड़ा सा खांस दूंगी, तो आप समझ जाना कि थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो आप थोड़ा कम कर लेना। तो कुछ मेहमान आए उनके घर में, अब ये वाचाल व्यक्ति आदतन शुरू हुए। उन्होंने कहा एक बार मैं जंगल से जा रहा था, वहाँ मैंने एक शेर देखा, उस शेर की जो पूंछ थी वो 100 मीटर लंबी थी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तो ज़्यादा लंबा हो गया। अब पत्नी ने खांस दिया तो उसे लगा कि शायद थोड़ा ज़्यादा है। उसने कहा नहीं नहीं 100 नहीं, शायद ना 80 मीटर थी। फिर कहा 60, फिर 40, फिर 20। अब बार बार जब वो खांस रहे थे
तो लोगों को शक हुआ।
तो उन्होंने कहा कि अरे भाभी जी की तबीयत खराब है, आप इनको डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? तो उन्होंने कहा अरे डॉक्टर वॉक्टर को कुछ नहीं दिखाना है, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज ये शेर की पूंछ कटवाएगी। शायद मैं चलता की बात है। दादा जी खैर जोक्स अपार्ट, आपने जो बात कही है कि हमारी ये सारी जो कर्मेंद्रियां हैं आज यदि देखा जाए तो सचमुच थोड़ी सी बहिर्मुखी हो गई हैं। देखने का रस है, सुनने का रस है, या खाने पीने का रस है, ये सारे रस अब हमारे अंदर समा गए हैं। कहाँ से शुरुआत की जाए? क्या हम मन को नियंत्रित करें तो ये नियंत्रित हो जाएंगे, या बाहर एक एक कर्मेंद्रियों को हम नियंत्रित करना शुरू करें?
देखिए मन को नियंत्रित करना तो बहुत सहज काम नहीं है
जी।
पहले हमें नियंत्रित करना चाहिए अपने बोल को, जो अपेक्षाकृत सहज है। हम थोड़ी संयमित वाणी बोलें, थोड़ा कम बोलें, और ये जान लें कि कम बोलने वाले व्यक्ति का महत्व ज़्यादा होता है। जो कम बोलता है उसको लोग ज़्यादा सुनना चाहते हैं, और जो ज्यादा बोलता है वही बात हुई, लोग समझते हैं तो बोलता ही रहता है, इसकी
वैल्यू नहीं देते,
कुछ वैल्यू नहीं है। पहले हम बोल से शुरू करें, और दूसरी शुरुआत हमें करनी चाहिए जीभ के रसों को छोड़ने की। जो खान पान की चीज है जिसका हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है, और जो मनुष्य को ईश्वरीय रसों से दूर ले जाती है। जो साधक हैं, जो योग अभ्यास कर रहे हैं, वो यदि ध्यान से अपने को ऑब्जर्व करें तो जैसे ही उनकी बुद्धि कहीं खाने पीने में जाएगी, उनका बुद्धि योग ऊपर से नीचे आ जाएगा, यानी उनकी एकाग्रता नष्ट हो जाएगी, परमात्मा से उनका कनेक्शन टूट जाएगा। तो दूसरा ध्यान देना चाहिए इस पर बहुत ज़्यादा, और तीसरा ध्यान देना चाहिए व्यर्थ सुनने पर, यानी कानों के रस पर। ये तीन ध्यान देंगे तो फिर चौथा अटेंशन जाएगा मनुष्य की आँखों पर, और ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, क्योंकि संसार में सब कुछ दिखता ही दिखता है और आंखें खुली हुई हैं, लेकिन फिर भी अच्छा देखने पर मनुष्य को कुछ अच्छी फीलिंग, बुरा देखने पर वो मुंह इधर को कर लेता है, और हर चीज़ का जिसे वो देखेगा उसका इफेक्ट उसके मन पर आएगा। तो फिर आत्मा देखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, यहाँ से शुरू होगा आप कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल। जैसे आत्मिक दृष्टि प्रारंभ होगी तो ये सुनने आदि की बात भी हल्की होती जाएंगी। आत्मा होने से देह के रस, जीभ के रस, ये भी समाप्त होने लगेंगे, और आत्मा देखने से हम स्वयं भी बॉडीलेसनेस का अभ्यास करेंगे, तो जो और कर्मेंद्रियां जिनमें काम उगता है वो भी हमारे कंट्रोल में आने लगेगी, और इस तरह हम संयमित व्यक्ति बन जाएंगे।
बिल्कुल, किसी को डायबिटीज है और खाने की इच्छा होने लगी तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाते, मतलब खाए बिना नहीं रह पाएंगे कि देखा जाएगा जो होगा, सुने बिना रह नहीं पाएंगे या देखे बिना रह नहीं पाएंगे। तो यहाँ जो एकदम अति वाली स्थिति हो गई है या बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो यहाँ कैसे संयम वाली
बात? इसके लिए ही मनोबल बहुत बड़ा चढ़ा होना चाहिए, क्योंकि मन की शक्ति से ही हम इन सब पर कंट्रोल पाएंगे। देखिए बौद्धिक सद्विवेक तो हमारे पास होता है कि भाई ये चीज खाने से हमें ये नुकसान हो जाएगा, या जो हम व्यर्थ की बातें सुन रहे हैं इनमें से आधी बेकार हो सकती हैं, आधी झूठी हो सकती हैं। तो हमारे पास ज्ञान तो होता है उन चीज़ों का, लेकिन कंट्रोल इसलिए नहीं कर पाते कि मन निर्बल है। तो मन को शक्तिशाली बनाना इसमें बहुत आवश्यक होगा, और इसके लिए वही बात कि तप से संयम आता है। तो राजयोग की जितनी तपस्या करेंगे परमात्म शक्तियाँ हमारे पास आएंगी, हमारे मन की विल पावर बहुत बढ़ जाएगी, और तब तेजी से जब हम चाहेंगे नहीं ये चीज नहीं खानी तो हम नहीं खाएंगे, इधर हमें नहीं देखना तो नहीं देखेंगे।
जो ये कहा गया है शायद कि राजयोग से हम कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हमारे अंदर आने लगती है, वो पावर शायद हमारे अंदर आ जाएगी। मतलब वही बात रही व्रता जी कि तप के माध्यम से ही शायद संयम हमारे जीवन में आएगा, उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कुछ मेल्स आए व्रता जी, जो हमारी तपस्या पे चर्चा हो रही है उस पे। एक पहला मेल आया है मुंबई से, निधि ने भेजा है हमें। ये कहती हैं कि मैं बचपन से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, अभी CA कर रही हूँ। मेरा आकर्षण संसार की ओर ज्यादा है, अध्यात्म की ओर कम। कृपया कुछ ऐसे संकल्प बताएं जो मुझे अध्यात्म व योग के लिए प्रेरित करें। वही जो हमारी बात हो रही है व्रता जी, आकर्षण संसार की ओर अध्यात्म।
हाँ, ये बहुतों में है और CA वालों के फोन भी बहुत आते हैं, कहीं उनकी फाइनल में असफलता के फोन, 5 बार असफल हो गए हैं अब क्या करें, कहीं इस कारण में निराशा आती जा रही है, क्लियर होगा या नहीं होगा। लेकिन ये प्रश्न सचमुच बहुत ही उपयुक्त है और आज के संदर्भ में बहुत ज़्यादा लोगों में यह दिखाई देता है कि अध्यात्म की ओर रुझान बिल्कुल कम है, विशेषकर हमारी जो नई पीढ़ी है, क्योंकि अध्यात्म का ज्ञान कहीं भी उन्हें प्रारंभ से मिलता नहीं है और उन्हें ये पता नहीं कि अध्यात्म क्या होता है, उन्हें हमारी भारतीय कल्चर का भी ज्ञान नहीं है। बहुत लोगों को हमारी भारतीय सभ्यता कितनी महान थी, हमारा अब से 100, 200, 500 साल पहले हम भारतवासी विशेष रूप से कितने महान, कितने ईमानदार, कितने नैतिक मूल्यों से भरपूर होते थे, उनका उनको ज्ञान नहीं तो कंपेरिजन नहीं। वो तो सोचते हैं ऐसी ही दुनिया है सदा, जो संसार की ओर आकर्षित है, जिसके पास संसार के बहुत सारे वैभव है, इज एवरीथिंग, मतलब वही जीवन
मतलब
का
धन दौलत
वही एंजॉयमेंट कर रहा है जीवन का, उन्हें ही पता नहीं कहीं, क्योंकि कहीं वो शिक्षा दे ही नहीं गई हमारे कॉलेजों में, स्कूल्स में, हमारी हायर एजुकेशंस में इस तरह की नॉलेज है नहीं। मैंने तो अभी सुना, मुझे बहुत खुशी हुई कल ही, कि UPSC ने, जिसमें IAS IPS ये सब हायर जो एग्जाम्स होते हैं, उन्होंने मॉरल वैल्यू और ये स्पिरिचुअल चीज़ों का एक विशेष पेपर रख लिया है। तो बहुत अच्छी बात, कल मुझे एक ऐसा व्यक्ति सुना रहा था जो ट्रेनिंग देता है इन सब कैंडिडेट्स को, तो बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने ये महसूस किया कि एक जिम्मेदार अधिकारी अगर हमें बनाने हैं तो वो मॉरल वैल्यू से, वो स्पिरिचुअलिटी से, वो सुंदर विचारों से, वो मनोबल से भरपूर होने चाहिए। तो इसकी शिक्षा क्योंकि आजकल बच्चों को नहीं है तो लोग उस तरफ देखते हैं, तो इस लड़की की ये बात ठीक है और मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बीज है कि वो स्पिरिचुअलिटी को भी देखना चाहती है, कम से कम जानना चाहती है। तो बस यही है, थोड़ा सा राजयोग की ओर कदम बढ़ाएं और उसमें 7 दिन का ही कोर्स है।
प्रताप जी, इन्होंने लिखा है कि ये बचपन से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय से जुड़ी हैं, मतलब शायद इनके माता पिता जाते रहे।
हाँ, तो ये जाती रही, हाँ तो ये रहा होगा कि बचपन से ये अपने माता पिता के साथ जाती रही होगी। अब इतना ही है कि ये 15 मिनट रोज अपने लिए दें और थोड़ा सा अपने बारे में चिंतन करें, क्योंकि इस आयु तक इन्होंने भौतिकता का ये बहुत सारा संसार जरूर कुछ ना कुछ देख लिया होगा। अब ये संकल्प करें कि स्पिरिचुअल पावर क्या है, उसकी भी मैं जानकारी अवश्य लूं। और स्पिरिचुअल पावर और कुछ नहीं, मन की शक्तियों को बढ़ाना, मन के विचारों को प्योरीफाई करना, बुद्धि में सद्विवेक भरना, सत्कर्म करना, ये स्पिरिचुअलिटी है। तो ये वैसे ही बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जिस फील्ड में भी ये जाएंगी, अब कल इनको CA बनना है, इनके सामने कई सारे चैलेंजेज आएंगे, उन चैलेंजेज को फेस करने के लिए, उन बातों को हल करने के लिए इसको एक सुलझा हुआ मन और एक बहुत अच्छी बुद्धि की जरूरत होगी। तो भले ही सांसारिक बुद्धि इनके पास है, CA की जो भी नॉलेज है वो इनके पास है, लेकिन केवल ये एकेडमिकल नॉलेज ही काफ़ी नहीं होती जीवन में सफलता के लिए, उसे मन की शक्ति और बुद्धि का एक सद्विवेक, जिसकी जरूरत बहुत होती है। तो इसको ये सोचना चाहिए कि जीवन में ये 2 पहिए हैं जीवन रूपी गाड़ी के, एक वो जो इन्होंने प्राप्त कर लिया है और दूसरी स्पिरिचुअलिटी। अब इस पहिए को थोड़ा मजबूत करें और फिर देखें कि क्या इसको इस चीज़ से फ़ायदा है, 6 मास देख ले, और 6 मास देखने से अगर ये कन्विंस हो जाए कि इसकी बहुत ज़रूरत है तो उसे कंटिन्यू करें।
हो सकता है, जैसे ये तो विद्यालय से जुड़ी हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें अध्यात्म के प्रति कोई रुझान नहीं है। इन्होंने एक बात कही थी व्रता जी, कि क्या कुछ ऐसे ठोस संकल्प हो सकते हैं जो हमारे मन में आए और अध्यात्म के लिए हमारे अंदर रुचि पैदा हो जाए।
देखिए, पहला ठोस संकल्प तो यही है कि हमें भगवान को जानना चाहिए, जिसने इस संसार की रचना की है, जिसने ये सुंदर खेल रचाया है। फिर कोई तो होगा इस संसार के पीछे, आप ही तो ये सब कुछ नहीं चल रहा, कोई इसका कंट्रोलर, कोई नियंता, कोई सुप्रीम पावर तो है। देश में भी नेता होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हो जाए, लेकिन उसके ऊपर भी एक प्रेसिडेंट रखना पड़ता है, तो एक सुप्रीम पावर तो हर जगह रखनी पड़ती है। तो इस संसार के पीछे भी कोई सुप्रीम पावर तो है, उसके बारे में भी जाने तो शायद हमें बहुत सारे सीक्रेट्स मालूम हो जाएंगे, और अपने बारे में भी जाने, हम इस संसार में आए क्यों, व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस लाइफ, हम कहाँ से आए हैं और हमें क्या क्या कर लेना चाहिए, यहाँ से ये अपने विचारों को चेंज करना प्रारंभ करें तो स्पिरिचुअलिटी की ओर इनका आकर्षण बढ़ जाएगा।
बिल्कुल, ये विचार शायद उन्हें इंट्रोवर्ट करेंगे और साथ ही स्पिरिचुअलिटी की ओर ले चलेंगे। पता जी, दूसरा हमारे पास आया हुआ है जो मेल, ये उमा जी हैं, कोच्चि से लिखती हैं। ये कहती हैं कि जब मैं योग करती हूँ तो कई बार बहुत अच्छा योग लगता है और कई बार बिल्कुल योग नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है? यदि योग ना लग रहा हो तो क्या करें? दो प्रश्न हैं।
हाँ, देखिए, ये प्रश्न भी बहुतों का आता है और ये मनुष्य के ब्रेन की भिन्न भिन्न स्थितियों के कारण होता है, और भी इसके कुछ कारण हैं। बाह्य प्रभाव, हमारे चारों ओर जो बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है उसका प्रभाव। मान लो कल का दिन टेंशन में बीत गया, आज पर उसका प्रभाव। आज किसी ने हमसे कुछ दुर्व्यवहार कर लिया, उसका प्रभाव। और ब्रेन की, जैसे मैंने कहा, भिन्न भिन्न स्थितियाँ, उसका प्रभाव। लेकिन एक और चीज़ भी है जिसको लोग बहुत कम जानते हैं। मनुष्य ने जन्म जन्म जो कुछ किया है, कभी कभी अनकॉन्शियस माइंड से आने वाली बैड एनर्जी मन को डाइवर्ट कर देती है, मन को एक स्टेबल स्थिति में नहीं रहने देती, या प्रसन्न चित्त मन हो या एक आनंद की फीलिंग हो मन में, उसे नहीं रहने देती, तो योग लगता नहीं है। ये कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, कोई लोग कहते हैं जैसे ही गुरुवार का दिन आता है, सैटरडे आता है, हमारा योग नष्ट हो जाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं हमारा योग लगता ही 5 बजे है, चाहे हम 2 बजे उठ जाएं, 3 बजे उठ जाएं, हमारा योग लगता ही नहीं, और जैसे 5 बजेंगे हमें कुछ नहीं करना है, हमारा बुद्धि योग ऊपर जुड़ जाएगा बड़ा पावरफुल ढंग से। तो ये हमारी ब्रेन की भी स्थितियां हैं। इसके लिए जब योग न लगता हो तो ज़्यादा खींचातान में न जाकर ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करें, कुछ अच्छे विचार उससे मिल जाएंगे, उन विचारों का इफेक्ट ब्रेन पर होगा और ब्रेन फिर से अपनी एक सुंदर स्थिति को प्राप्त कर लेगा और योग अच्छा लगने लगेगा। उस टाइम ये भी आवश्यक है कि जिस स्थान पर वो हैं उसे थोड़ा छोड़ दें, बाहर आ जाएं थोड़ा, अगर बगीचा हो उसमें आ जाएं, अगर बाहर पैसेज हो, वरांडा हो, उसमें आ जाएं, थोड़ी खुली जगह में आ जाएंगे तो इनसे ब्रेन की स्थितियां बदलती रहती हैं, तो योग फिर अच्छा लगने लगेगा।
पता है, जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे किसी का 5 बजे योग लग रहा है, किसी का गुरुवार या शनिवार को योग नहीं लगा, लेकिन ये इन सभी जो बाउंड्रीज हैं या बाउंडेशन है उन्हें भी तो हमें तोड़ना है ना, हमें तो एक निरंतर योग की ओर बढ़ना है, तो ये फिर कैसे संभव हो, क्योंकि इस पे डिपेंडेंट भी तो नहीं रहा जा सकता।
देखिए, अगर इनको हमें तोड़ना है तो हमें श्याम के समय योग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। श्याम की योग की प्रैक्टिस सवेरे के योग अभ्यास को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, और रात को अगर किसी को ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 1 घंटा स्वयं के लिए दे देना चाहिए। आधे घंटे में कुछ अच्छी स्टडी करें और आधे घंटे में बहुत अच्छा योग अभ्यास करें, तो इससे धीरे धीरे ये जो ऐसी चीज़ें मनुष्य के जीवन में आती हैं, बैड फैक्टर्स, इनका इफेक्ट समाप्त हो जाएगा।
जी जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी। निश्चित रूप से सभी एक अच्छे योग की ओर बढ़ेंगे और ये सारे जो आधार हैं, कई बार होता है कि अच्छा लग रहा है, कई बार नहीं हो रहा है, इसमें भी कई बार एक उलझन की स्थिति पैदा हो जाती है और निराशा आने लगती है कि क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए, आपने सुंदर प्रकाश दिया है कि अध्ययन भी करें, योगाभ्यास भी करते रहें, जल्दी से इस प्रभाव से भी मुक्त हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप जी। मित्रों, लगातार हम योग की चर्चा कर रहे हैं, तपस्या की चर्चा कर रहे हैं, और सचमुच बहुत ही गहन बात है कि कैसे अलग अलग स्थितियों में हमें अलग अलग अनुभव होते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि जब हम इस मार्ग पे चलते हैं तो विभिन्न अनुभवों से हमें गुजरना भी पड़ता है, कई बार अच्छे अनुभव हैं, कई बार बुरे भी अनुभव होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम एक अच्छे अनुभव तक पहुंचेंगे ही जरूर, और साथ ही जब परम सत्य को हमने चुना है या परम सत्य के पथ को हमने चुना है तो सचमुच इस रास्ते पे आनंद तो ज्यादा है, भले ही थोड़े से कंटक आते हैं, शायद पास्ट का प्रभाव है या इस जन्म में भी कुछ ऐसे बुरे कर्म रहते हैं जो भी कई बार रोड़े बन जाते हैं। लेकिन बात वही, हिम्मत ना हारा जाए और लगातार प्रयास करते रहा जाए तो निश्चित रूप से हम सुंदर मंजिल तक पहुंचेंगे। कहा जाता है ना कि यदि मंजिल बहुत खूबसूरत है तो रास्ते में कितने भी बाधाएं हो उन्हें नहीं देखा जाता, लेकिन मंजिल की जो सुंदरता है वो बार बार हमें आकर्षित करती रहती है। तो श्रेष्ठ तप करते रहिएगा ताकि आपकी एकाग्रता बढ़ती चले और सुंदर से सुंदर अनुभव प्राप्त होते चले। इस सुंदर ज्ञान की चर्चा को आगे भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।